नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बहारा चारियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
लोकसभा की कार्यवाही दो बार और राज्यसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
19 लाख हाउस होल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। निशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।